लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि क्रिस्त के सुसमाचार के प्रति निष्ठावान और सदैव धर्माधीक्षित धर्म सभा की संयुक्ति में जीवन यापन कर कलीसिया एकात्मता, भ्रातृत्व और आतिथेय का समुदाय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव के रूप में हम अपने जीवन में सदैव छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित और व्यथित हो जाते हैं। हम अपने जीवन के दुख, दर्द और तकलीफों में ईश्वर के निकट दौड़े आते और उन्हें अपने से दूर करने हेतु अनुनय विनय करने लगते हैं। यह हमारे लिए इस बात की ओर इंगित कराता है कि मानव के रूप में हम अपने में चाहे कितना भी शक्तिशाली और सामर्थ्यवान क्यों ना हो, जीवन में विपत्तियों के कहर आने पर हम अपने घुटनों में गिर जाते हैं। श्रोताओं, आज अपने जीवन के दुख तकलीफों में ईश्वर के घर की शरण लेना हमारे लिए इस सत्यता को व्यक्त करता है कि हम मानव अपने जीवन में कमजोर और बेबस हैं, और अपनी इस दुर्बलता के कारण हम उस दिव्य शक्ति की ओर अभिमुख होते हैं जो हमें विपत्तियों से बचा सकती है। अतः यह हमारे विश्वास को प्रकट करता है कि ईश्वर के पास आना और उसके आगे नतमस्तक होना हमारे असंभव कार्यों को संभव बनाता है, और इस भांति हम अपने विश्वास के कारण अपने को ईश्वरीय कृपाओं से पोषित होता पाते हैं जो हमें अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने में सबल बनाता है। श्रोताओं, 27वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमें प्रेरितों के एक निवेदन के बारे में कहता है, जहां वे अपने गुरुवर से निवेदन करते हैं कि वे उनके विश्वास को बढ़ाएं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि ईश्वर में हमारा विश्वास किस हद तक बढ़ा है। क्या हम विश्वास में अपने जीवन को पूर्ण रूपेण उनके हाथों में समर्पित करते हैं जो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में, हमारे दुख तकलीफों में भी हमें अडिग बने रहने को मदद करता है? क्या ईश्वर में हमारा विश्वास हमें धैर्यवान और सहनशील होने में मदद करता है? क्या अपने विश्वास में हम भयमुक्त होकर अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्ण और ईमानदारी पूर्ण ढंग से निर्वाहन करने हेतु सदैव तैयार रहते हैं?
प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर या ढोर चरा कर खेत से लौटता है तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, जाओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कस कर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम्हारी भी वही दशा है। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने आपका कर्तव्य मात्र पूरा किया है।
श्रोताओं, सुसमाचार के जीवनदायी वचन हमें ईश्वर से मिलने वाली विश्वास की कृपा में बढ़ने और मजबूत होने में मदद करे, जिससे हम अपने में सेवक होने के मनोभावों को सदैव धारण कर सकें। यह हमें यीशु ख्रिस्त की भांति नम्रता के भाव को अपने में वहन करने हेतु मदद करे, जिससे हम निष्ठा और आज्ञाकारिता में अपने कार्यों को ईश्वर की महिमा हेतु पूरा कर सकें। श्रोताओं, नबी हबाकुक के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए दुनिया में व्याप्त दुख तकलीफों और बुराइयों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराता और उनके कारण मानव के हृदय में हो रही व्यथा के बारे में कहता है। अपने जीवन में व्याप्त मुसीबतों को लेकर मानव ईश्वर से पूछता है कि जीवन में व्याप्त कष्ट और पीड़ाओं का अंत कब होगा। यह वर्तमान परिवेश में मानव के जीवन स्थिति हमारे जीवन का हाल व्यक्त करता है। अपने जीवन में दुख तकलीफों और मुसीबतों के दौर से होकर गुजरना हमारे जीवन को मरणशील बना देता है। हम में से हर कोई अपने जीवन की तकलीफों और मुसीबतों से छुटकारा पाने की कामना करते हुए ईश्वर से यही सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में मुसीबतों का दौर कब तक चलता रहेगा या कब खत्म होगा। श्रोताओं, जब तक हमारा यह भौतिक जीवन है, हमारे जीवन में दुख तकलीफों और मुसीबतों का दौर दिन रात की भांति सदैव ही चलता रहेगा। जीवन की कठिनाइयों के कारण हम अपने में हताशी और निराशा का अनुभव करेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि हम अपने में धैर्यवान और ईश्वर के प्रति विश्वासी बने रहते तो यह हमारी धार्मिकता का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ईश्वर हमें कहते हैं कि जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा, वहीं दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण नष्ट होगा। श्रोताओं, आज का पहला पाठ हमें अपने जीवन की कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर के प्रति विश्वासी और ईमानदार बने रहने का निमंत्रण देता है। अपने विश्वास के कारण जहां हम अपने जीवन की सारी चीजों को, चाहे वे सुख की घड़ी हो या दुख की, ईश्वर के हवाले करते तो हम ईश्वर के संग अपने जीवन को सबल होता पाते हैं। ईश्वर पर हमारा यह विश्वास हमारे लिए साक्ष्य का कारण होता है, जिसके द्वारा हम उनकी महिमा और स्तुति करते हैं। आज का दूसरा पाठ विश्वास के कारण हमें मिली शक्ति का जिक्र करते हुए कहता है कि हस्तारोपण के माध्यम हमें ईश्वरीय शक्ति प्रदान की गई है। यह हमें भयभीत होने को नहीं, बल्कि प्रेम और आत्म संयम में बने रहते हुए ईश्वर का साक्ष्य देने का आह्वान करती है। यह वह दिव्य शक्ति है जो हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि यह हमें जीवन के स्रोत पवित्र आत्मा में मिली है। यह हमारे लिए बहुमूल्य निधि है, जिसे हमें सुरक्षित रखने को कहा जाता है। श्रोताओं, अपने जीवन की दुख तकलीफों के कारण हम बहुधा विचलित हो जाते हैं। उनके कारण कई बार हम अपने में लज्जा का अनुभव करते हैं। अपने लज्जा के कारण हम अपने जीवन को पूर्ण स्वतंत्रता में नहीं जी पाते, और स्वतंत्रता का अभाव हमें उस सत्य के साक्षी होने में बाधक बनता है जिसकी मांग हमसे की जाती है। ये सारी चीजें हम में व्याप्त विश्वास की कमी को दिखलाती है, जो हमारे लिए न केवल ईश्वर में अपने कमजोर विश्वास को व्यक्त करता है, बल्कि ईश्वर में अपने छोटे विश्वास के कारण हम स्वयं अपने जीवन की अन्य दूसरी बातों में अपने को कमजोर पाते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रेरित प्रभु यीशु ख्रिस्त से अपने विश्वास को बढ़ाने की मांग करते हैं। इसके उत्तर में यीशु उनसे कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने सा भी होता तो तुम अपने में महान कार्य पूरा करते। श्रोताओं, विश्वास का तात्पर्य हमारे लिए आज्ञा पालन से है, जिसकी चर्चा करते हुए यीशु हमें सेवाकाई कार्य का जिक्र करते हैं। खेत से काम कर लौटा हुआ सेवक अपने स्वामी के कहने पर पुनः उसकी सेवा में अपने को प्रस्तुत करता है। श्रोताओं, हमसे भी यही आशा की जाती है कि हम भी एक भले सेवक की भांति ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति अपने को समर्पित रखें। प्रेम में अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के प्रति हमारा यह समर्पण हमें उनकी निगाहों में एक प्रिय सेवक बनाता है, जहां हम अपने जीवन के कठिन क्षणों में भी अपने को तनिक भी विचलित होता नहीं पाते हैं। आइए हम अपने विश्वास की आदर्श माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपने बेटे यीशु ख्रीस्त के प्रति एक उदार सेवक बनने में मदद करें, जो अपने सेवा के कार्यों को पूरा करने हेतु हमें इस धरती पर भेजते हैं।
दूर से आया दास तुम्हारा, दास को अपनी शरण में रख लो। दूर से आया दास तुम्हारा, दास को अपनी शरण में रख लो। चरण तुम्हारे सबसे पावन, विनती है अब चरण में रख लो। दूर से आया दास तुम्हारा, दास को अपनी शरण में रख लो।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन में खेल पर आयोजित सम्मेलन के प्रतिभागियों से मुलाकात की तथा उन्हें प्रोत्साहन दिया कि वे खेल को सभी का घर, सभी के लिए खुला और स्वागत करने वाला बनाएं। खेल पर शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे खिलाड़ियों, प्रबंधकों और अधिकारियों को संबोधित कर संत पापा ने उस महान लक्ष्य की सराहना की जिसने खेल के इरादे को सभी के लिए प्रोत्साहित किया। संत पापा ने सभा के अंत में सभी प्रतिभागियों से वैटिकन के पौरुषष्ठम सभागार में मुलाकात की। सभा का आयोजन वैटिकन के लोक धर्मी परिवार और जीवन विभाग, संस्कृति एवं शिक्षा विभाग और संत जॉन पॉल द्वितीय फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। 40 देशों से विभिन्न धर्मों के खेल संस्थानों, संगठनों और विभिन्न प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को वैटिकन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सभा में भाग लिया। संत पापा ने कहा, इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक टीम के रूप में एकता में एक साथ काम करना है। कलीसिया इसमें बहुत रुचि ले रही है क्योंकि इसका उद्देश्य है ऐसा वातावरण एवं गतिविधियां तैयार करना जिससे यह लोगों के लिए आपसी मिलन का स्थान बने तथा लोगों को मूल्य एवं भाईचारा में बढ़ने का अवसर प्रदान करे। पोप ने कहा कि मानव व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए खेल एक ऐसी कुंजी है जिससे सहभागिता, बांटने, आत्मीयता और समुदाय की भावना उत्पन्न की जा सकती है। खेल आनंद प्रदान करता, मिलनसारिता बढ़ाता और मित्रता उत्पन्न करता है, साथ ही विकास के लिए भी मददगार है। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए संत पापा ने याद किया कि वे किस तरह युवाओं के लिए सकारात्मक रोल मॉडल बन सकते हैं। उन्होंने सभी लोगों को प्रोत्साहन दिया कि वे खेल को सभी लोगों का घर बनाने हेतु प्रयत्न करें जो खुला और स्वागत करने वाला हो। उन्होंने अपना सामीप्य व्यक्त करते हुए इस मिशन के लिए कलीसिया का समर्थन व्यक्त किया। अंत में संत पापा ने कहा, इस घर में पारिवारिक भावना कभी समाप्त ना हो, इस तरह खेल जगत में हम भाइयों, बहनों और मित्रों को पा सकें। और आज के ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने युद्ध की आदि इस दुनिया में हमें कोमलता की सच्ची क्रांति की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने संदेश में लिखा, हम बुजुर्गों को देखभाल, चिंतन एवं स्नेह की एक विशेष संवेदनशीलता होती है। युद्ध की आदि इस दुनिया में हमें कोमलता की सच्ची क्रांति की आवश्यकता है।
संत पापा फ्रांसिस ने अति पौत्र मुक्तिदाता को समर्पित धर्म समाज या रिडम ट्रस्ट के सदस्यों से शनिवार को वैटिकन में मुलाकात की तथा उन्हें अपने मिशन के प्रति निष्ठावान एवं दृढ़ बने रहने का प्रोत्साहन दिया। रिडम ट्रस्ट की महासभा में भाग लेने वाले 140 सदस्यों से शनिवार 1 अक्टूबर को संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में मुलाकात की। महासभा में 85 देशों के सदस्य भाग ले रहे हैं। संत पापा ने सभा के प्रतिभागियों को संबोधित कर कहा, महासभा में भाग लेना कोई धर्म वैधानिक औपचारिकता नहीं है, यह पेंतेकोस्त को जीना है जो सब कुछ को नया बना सकता है। जब यीशु के शिष्यों को संदेह, असुरक्षा एवं भय महसूस हो रहा था, तब वे ऊपरी कमरे में दृढ़ एवं सुरक्षित बने रहना चाहते थे, किंतु आत्मा जो जिधर चाहता उधर बहता उन्हें बाहर निकलने, कस्बों में जाने तथा यीशु के पुनरुत्थान के सुसमाचार की घोषणा करने का बल प्रदान किया।
संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को उर्सुलाइन ग्लोबल एजुकेशन कॉम्पैक्ट के समापन सत्र के दौरान प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा। छात्रों को संबोधित करते हुए संत पापा ने उन्हें उत्साह के साथ अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही यह याद किया कि वे अपने स्कूल के अनुभवों को एक छात्र और एक शिक्षक दोनों के रूप में अपने जीवन के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण अवधियों में से एक मानते हैं। संत पापा ने पर्यावरण की सुरक्षा, स्थिरता, मानव बंधुत्व और गरीबों एवं कमजोरों पर ध्यान देने से संबंधित पहलों के साथ साथ पाइपलाइन की लागू की गई पहलों को भी स्वीकार किया। वे इन पहलों का श्रेय उन युवाओं को देते हैं जो कहते हैं वे सोने के बजाय जाग रहे हैं। वे ग्लोबल एजुकेशन कॉम्पैक्ट में सक्रिय भाग ले रहे हैं, जिसे उन्होंने 3 साल पहले विश्व बंधुत्व में सभी के लिए खुला गठबंधन और खुद को शिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया था। संत पापा ने युवा छात्रों के सामने 2 महत्वपूर्ण पहलुओं को रखा, होना और करना। उर्सुला नाम की एक खूबसूरत लड़की से प्रेरणा लेते हुए असाधारण सुंदर महिला, जिसकी राजकुमारों और शूर वीरों एवं कई युवा लोगों द्वारा प्रशंसा की जाती है, जिसमें संत अंजेला मारीची भी शामिल है, जिन्होंने अपने साथियों के साथ उर्सुलाइन नामक शिक्षा में अपना काम शुरू किया। संत पापा ने युवाओं से वास्तविक सुंदरता को अपनाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने छात्रों को उस सुंदरता को दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जो हमेशा से हमारा था। सृष्टि के पहले क्षण से, जब ईश्वर ने मानव जाति को अपनी छवि में बनाया और देखा कि यह सब बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा कि इस सुंदरता को साझा किया जाना चाहिए और इसका बचाव किया जाना चाहिए। हम किसी व्यक्ति को सुंदरता की ओर लिए बिना, दिल को सुंदरता की ओर ले जाए बिना शिक्षित नहीं कर सकते। सुंदरता का मार्ग एक चुनौती है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए। संत पापा ने कहा, सच्ची सुंदरता हमेशा फलदायी होती है। यह हमें बाहर की ओर ले जाती है और हमें आगे बढ़ाती है। लोकतांत्रिक संस्थानों और मानव अधिकारों के लिए OCSE कार्यालय द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए मोनसिन्योर जानुस उर्बानसिक ने चेतावनी दी कि यहूदी विरोध से प्रेरित असहिष्णुता और भेदभाव मुसलमानों, क्रिश्चियों और अन्य धर्मों के सदस्यों के खिलाफ पूर्वाग्रह दुनिया में बढ़ रहा है। वियना में वारसा मानव आयाम सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन OCSE के लिए परमधर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक ने कहा कि सबसे हालिय घृणा अपराध डेटा से पता चलता है कि कार्यालय में रिपोर्ट की गई सभी घटनाओं में से 51% धार्मिक घृणा विरोधी अपराध थे। इस गलत धारणा का खंडन करते हुए कि केवल अल्पसंख्यक ही असहिष्णुता और भेदभाव का शिकार बन सकते हैं, उन्होंने कहा कि ख्रिस्तियों को उन देशों में भी लक्षित किया जा रहा है जहां वे बहुसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।